हरे कृष्णा। तो आज के इस मंगलवार के 7 मई के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने बहुत प्रेम से संकीर्तन भी किया, नृत्य भी किया और भगवान को, जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। तो हमारी रामायण की कथा चल रही है और आप सबको पता ही है कि श्री रामचंद्र प्रभु ने मिथिला में जाकर सीता जी से विवाह किया, उनका स्वयंवर जीता। उसकी कहानी हमने पिछली बार बताई थी ना। हरे कृष्ण। तो जब प्रभु रामचंद्र सीता जी को लेकर विवाह करके लौट गए अयोध्या में, तो कुछ साल युवराज के रूप में रहे और युवराज के रूप में वो अयोध्या वासियों को, पूरे भारतवर्ष के वासियों को इतने प्रिय हो गए, उनके दिव्य गुण सबको प्रभावित करने लगे और सबके मन में जैसे अपना कोई पुत्र होता है वैसे ही प्रभु रामचंद्र के प्रति प्रेम था। सब जनता जो थी, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं थी, कोई कैंपेनिंग, कोई प्रचार की जरूरत नहीं थी, सबके हृदय के सम्राट थे प्रभु रामचंद्र। और एक दिन जब प्रभु रामचंद्र युवावस्था में परिपक्व हो गए तो दशरथ जी ने चुना कि अभी हम प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक करेंगे। बड़ी लंबी कहानी, सबको पता है वो, लेकिन आज हम आपको उस कहानी का एक जो अंग है उसके बारे में वर्णन करेंगे। वो अंग ये है कि अयोध्या जो है वो इतनी शक्तिशाली राज्य था अयोध्या, कि अयोध्या में कभी भी शनि का प्रभाव नहीं हुआ, किसी भी योद्धा ने आकर वहाँ पर विजय प्राप्त नहीं की। एक्चुअली अयोध्या में कभी युद्ध ही नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम था अयोध्या। केवल दशरथ महाराज के भक्तिमय शक्ति के कारण वहाँ पर केवल आनंद, सुकून, शुभ शकुन हमेशा हुआ करता था। तो अयोध्या जी जो नगरी है ये संस्कृति का लक्षण है। संस्कृति यानी दिव्य कल्चर, व्यवहार की संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति का एक प्रमाण है वो अयोध्या देव, अयोध्या नगरी। और जो रावण की नगरी है लंका, वो विकृति का प्रमाण है। विकृति यानी क्या कहते हैं उसको, परवर्जन। तो अयोध्या संस्कृति का प्रमाण है और लंका जो है वो विकृति का प्रमाण है। अयोध्या में भी दो भाइयों के बीच में मतभेद, मतलब मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो गई थी। और रावण के दरबार में भी रावण विभीषण के अंदर गलत फहमी हो गई थी। और किष्किंधा में भी सुग्रीव और वाले के बीच में गलत फहमी हो गई थी। तो ये गलत फहमियाँ सब जगह होती है। जब तक हम लोग भौतिक दुनिया में जीते हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, इसके दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो गलत फहमियाँ होती रहती है। लेकिन गलत फहमी होने के बाद में लोग क्या करते हैं उसके ऊपर उनका संस्कृति निर्भर रहता है। तो अयोध्या में आज हम बताएंगे किस तरह से गलत फहमी हुई और किस तरह से सुसंस्कृत लोग, जो उन्नत लोग हैं, जो उच्च दर्जे के लोग हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं गलत फहमी होने के बाद, उसका हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र को युवराज चुना गया तो मंथरा ने आकर कैकेयी का मन भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि देवता लोगों की इच्छा थी कि रावण का वध किया जाए। वो प्रभु रामचंद्र का विवाह हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, राजा बन रहे हैं, अयोध्या में बसेंगे, तो रावण का वध कौन करेगा? इसलिए शास्त्र में लिखा है कि देवताओं ने सब मिलकर मंथरा का मन भ्रष्ट कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी उसकी। और वो बुद्धि भ्रष्ट हुई मंथरा फिर कैकेयी के पास में आई और उसने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। फिर कैकेयी ने बड़ा षड्यंत्र करके दशरथ राजा को अपने दो वर मांगे। एक वर द्वारा उन्होंने कहा कि राम को वनवास जाना चाहिए, दूसरे वर द्वारा कहा कि भरत राजा बनना चाहिए। दुर्भाग्य से कहिए या योगायोग से कहिए, उस समय भरत अपने मामा को मिलने गए थे, उस समय वो अयोध्या में नहीं थे। लेकिन फिर भी कैकेयी ने इतना बड़ा ड्रामा किया, पहले तो सब अलंकार उतार दिए, फिर काले वस्त्र पहने, फिर वो क्रोध भवन में गई, क्रोध भवन में जाकर वो जमीन पर लेटी और फूट फूट कर रोने लगी। जब उसको मिलने के लिए दशरथ राजा आए कि कल हमारे पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है, इस खुशी से वो मिलने आए देखा तो राजमहल में वो नहीं थी, बोले कहाँ गई है, क्रोध भवन में गई है, बहुत परेशान है। तो भाग के क्रोध भवन में गए, क्या बात है क्रोध भवन में गई, क्या कारण है, ऐसे क्या बात है, कल मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला, इतनी खुशी की बात है, पूरा अयोध्या नगरी आनंद मना रही है, उत्सव मना रही है, आप दुखी क्यों हो। तो वो कहते हैं कि जब युद्ध में मैंने आपको बचाया था एक बार, तब आपने मुझे दो वरदान मांग दिए थे, और मैंने कहा था कि योग्य समय पर मैं वो लूंगी आपसे। वो कहते हैं आज वो समय आ गया है। बोले मांगो, तुम्हारे लिए क्या मैं कर सकता हूँ, जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। वरदान क्या है बोलने के पहले ही दशरथ महाराज बोलते हैं कि हमारे कुल में आज तक किसी ने अपना वचन तोड़ा नहीं है, रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, क्या करूं तुम्हारे लिए, मैंने बहुत पहले वादा किया है तो आज मैं उसको निभाऊंगा, आप मांगो, लेकिन इतना क्रोध मत करो, दुखी मत हो जाओ इस प्रसंग में जो आनंद का प्रसंग है, ये दुखी होने का समय नहीं है, मेरे प्रिय प्राण, प्राण के क्या कहते हैं उसको, हृदय के प्राण, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, आप तुरंत वर मांगो और खुश हो जाओ। तो वो पहला वर बोलती है कि प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुन के ही दशरथ महाराज बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं जमीन पर। तो वो कहते हैं अच्छा बस, अभी तो बड़े टिमके लगा रहे थे आप कि वर देंगे आपको, वचन पूर्ति करेंगे, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं, और अब वर कहते ही बेहोश हो गए, अगर नहीं देना है वरदान तो मत दो, लेकिन झूठ मूठ का वादा मत करो, आपने कहा दे दूंगा इसलिए मैंने मांगा। तो फिर वो अपने आप को संभाले, फिर बेहोश हो गए, फिर संभाले, फिर बोले दूसरा वर, वर क्या है। वो कहते हैं कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा, क्योंकि मंत्रा ने उसको बिल्कुल पढ़ा के भेजा था कि इसको वनवास में भेजो, क्योंकि वो उसी राज्य में रहेगा तो बार बार जनता उसी को आगे करेगी और भरत का जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले राम को वनवास भेजने का वरदान मांगो और फिर अपने पुत्र को राजा बनने का वरदान मांगो, क्योंकि राम अगर राजा बनेगा तो कौशल्या दशरथ की प्रिय रानी बनेगी और तुम नंबर दो की रानी बनोगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, भरत राजा बनेगा तो तुम पटरानी बन जाओगी। ये सब पॉलिटिक्स कहते हैं उसको, दिस इज पॉलिटिक्स, राजनीति, कूटनीति कहते हैं उसको। तो ये सबसे बहुत देर संग करने के बाद में उसका मन पूरा भ्रष्ट हो गया था। पहले पहले तो मंत्रा का बात मानकर मानने के लिए कहकर तैयार नहीं थी, बोले मंत्रा तुम पागल हो गई हो, कुछ ना कुछ बके जा रही हो, लेकिन बार बार उसी के साथ उसकी बातें सुन सुनकर उसका भी मति भ्रष्ट हो जाती है। इस समय भरत मामा के पास गया था, उसको कुछ पता नहीं, वो इतना राम के प्रति उसका प्रेम है, कभी भी सपने में भी सोचेगा नहीं कि मैं राम को छोड़कर, राम को भगाकर राजा बनूं, उसके मन में ऐसा विचार कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन वो उस समय मामा के घर में था, परदेश में गया था। इतने में एक ही दिन के अंदर कैकेयी राम को कहती कि कल के कल ही जाना है आपको, ऐसा नहीं कि भाई 8 दिन के बाद जाना है, तुरंत जब मैं वर मांगा है तुरंत जाना है। दशरथ जी कहते मैंने आपको वरदान दिया तो मुझे वरदान देना ही पड़ेगा। वो तुरंत अपने हाथ से उनको पेड़ की खाल देती है, पेड़ की खाल पहनो, अभी राजवस्त्र को उतार दो। तो राम के जाने के बाद सुनकर लक्ष्मण कहते हम भी जाएंगे, सीता कहते हम भी जाएंगे, बहुत लंबी कहानी है, हम कुछ कट शॉर्ट कर रहे हैं उसको। राम लक्ष्मण सीता तीनों राजवस्त्र उतार कर, क्योंकि तो राम की पत्नी, युवराज की पत्नी सीता देवी, युवराज राम और दूसरे युवराज के छोटे भाई लक्ष्मण, सब राजकुमार थे, सब राजवस्त्र उतार दिए उन्होंने, और पेड़ की खाल, उसको कहते हैं वलकल, वलकल यानी पेड़ की जो खाल है ना उसके भी वस्त्र होते हैं, वो जंगल में पहनते लोग। और क्या नियम बनाया, केवल कंदमूल खाना है, कोई पकवान नहीं खाना है, कोई भी भोजन पका के नहीं खाना है, जो कच्चा भोजन मिलता है ना फल फूल वही खाना है, कोई वस्त्र नहीं पहनना है, केवल पेड़ की खाल पहननी है, कोई जूता नहीं पहनना है, नंगे पैर चलना है, किसी घर में रहना नहीं है, जंगल में पर्णकुटी कोई घास की कुटी बनाकर रहना है, और किसी भी एक जगह पर अधिक दिन रहना नहीं है। ऐसे भयंकर व्रत बताया उसने, सब राम जी ने हाँ कर दिया, उस जंगल में जाने लगे। सब अयोध्या के लोगों ने कहा कि अभी हम सब लोग प्रभु राम के पीछे जाएंगे, क्योंकि तो जहां राम ही नहीं है वहां पर अयोध्या का मतलब क्या है, जहां राम रहेंगे वो अयोध्या रहेगी, अगर जंगल में राम जाएंगे तो हम सब जंगल में जाके जंगल में अयोध्या बसाएंगे, और ये जो शहर की अयोध्या है वो जंगल बन जाएगी, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर रहने दो दशरथ को और रहने दो वैकेयी को, क्योंकि दशरथ पर भी लोग गुस्सा करते हैं कि इसने पत्नी के वश में आकर वरदान दे दिया, कैसा पति है ये, कैसा राजा है, राजा के बारे में सोचा ही नहीं, पुत्र के बारे में सोचा ही नहीं, पत्नी को वरदान दे दिया। तो सब जनता जो है दशरथ पर भी गुस्सा हो गई थी, कैकेयी को लांछन दे रही थी, बुरे बुरे शब्द कह रहे थे, और सब जनता जो है उसमें लिखा है रामायण में बाल बच्चे बड़े बूढ़े स्त्रियां और आदमी सब अपना घर छोड़ के निकल गए। ऐसा नहीं सामान पैक करके बैग भर के निकले, वैसे ही निकले दुख में। प्रभु राम निकले तो उनके पीछे ये भी निकले, पूरी अयोध्या निकली उनके पीछे, और राम जी ने बहुत मनाया उनको, आप मत आओ, हम तो देखो अयोध्या में रहना है, हम आएंगे लौट के आपके पास, बोला हमको रहना ही नहीं यहाँ पर, एक साल भी, एक साल एक दिन भी रहना नहीं है, आपके संग ही चलेंगे। तो रात भर चलते हैं, सरयू नदी के किनारे में जाके सोते हैं, तो बीच रात में उठकर राम चले जाते हैं। जनता बाद में उठती है, देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र भी नहीं है, मंत्र भी सुमंत्र भी नहीं है, रथ भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं, सीता भी नहीं, कोई नहीं, तो दुखी होकर लौटते हैं। और फिर रामचंद्र प्रभु जो है वो निषाद राज गुहा के जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर निषाद राज गुहा जो है वो राम जी के बड़े भक्त थे, बड़े दिनों से राम जी का इंतजार कर रहे थे कि हमारे दरबार में आएंगे, लेकिन अभी वो वनवास के रूप में आए, राजकुमार बनकर नहीं आए। बड़ा दुख हुआ उनको, उन्होंने कहा मेरी पूरी सेना लेकर हम अयोध्या पर आक्रमण करेंगे और भरत दशरथ सबका प्रभाव करेंगे और आपको राजा बनाएंगे, या तो आप ऊपर आक्रमण मत करो, मेरा राज्य ले लो और यहाँ के राजा बनो। तो प्रभु रामचंद्र कहते मैं पिताजी के वरदान के द्वारा उनको वचन दे चुका हूँ, मैं वनवास में हूँ, मैं तुम्हारा कोई राजदार दरबार का ठाट स्वीकार नहीं कर सकता, तुम्हारा आतिथ्य राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो कंदमूल खाऊंगा और पर्णकुटी में रहूंगा। तो सब कुछ पंच पकवान लेके आते हैं, प्रभु रामचंद्र नहीं खाते उसे। इतना सब हो रहा है, एक दो चार दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भरत लौट के आते। तो भरत आते ही कैकेयी उनका स्वागत करती है, हाँ मेरे राजपुत्र युवराज होने वाले राजा, मेरे भरत तुम राजा बनने वाले हो। बोला क्या बात कर रही हो तुम होश में तो हो, हाँ तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा है और तुम्हारी राजमार्ग का राज का जो राजा बनने का मार्ग जो है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे बड़े भाई राम को वरदान मांगकर जंगल भेज दिया है। उसको लगा कि भरत मुझे बहुत बधाई देगा, बहुत वाह वाह करेगा मेरी, लेकिन भरत एकदम क्रोध से लाल हो जाता है, तो कैसी माँ हो तुम, मैंने मेरे प्राण प्रिय राम के आगे कुछ सोचा ही नहीं है, मैं तो केवल उनका सेवक मात्र हूँ, राजा बनने की बात तो दूर रही, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहते आज से मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा, आज से तुम मेरे लिए मृत हो, पूरे अयोध्या के लिए तुम एक लांछन हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें माँ कहने के लिए, मुझे शर्म आ रही इस बात की कि मैंने तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। ऐसे बड़ा लंबा संभाषण है, अपने माँ को बहुत कोसता है वो, और बार बार ये कोशिश करता है बताने की कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब तक पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई थी कि भरत के सहयोग के बिना इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रच सकता है। भरत जानबूझ के मामा के पास गया था, लेकिन अपनी माता के पास पूरा षड्यंत्र रचा कर गया था। ऐसी गलतफहमी पूरी अयोध्या में फैल जाती है, तो जनता पूरी अयोध्या की जनता जो है वो भरत के भी खिलाफ थी। भरत दशरथ कैकेयी ये तीनों अयोध्या वासियों के लिए दुश्मन के रूप में साबित हो रहे थे। भरत तो बिल्कुल निष्पाप थे, भरत का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो रो रहे थे कैसे मेरी माँ ने क्यों किया, मेरे नाम के लिए किया, मेरे लिए किया, कितना बड़ा अपराध किया तुमने। तो भरत जी ने कहा कि अभी मैं जंगल में जाऊंगा, सब ब्राह्मणों को इकट्ठा करते हैं, सब सेना को इकट्ठा करते हैं, राजदंड लेते हैं और जंगल की ओर चलने लगते हैं। तो अयोध्या की जनता क्या बोलती है, देखो जनता का प्रेम कैसे रहता है, जनता का प्रेम तो पूरा राम जी के साथ में है, और वो क्या सोच रहे हैं कि कैकेयी ने भरत से मिलकर ये सब योजना बनाई थी, इसलिए भरत पापी है। तो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो देखो जो पाप किया ना वो अभी धोने के लिए या नाटक करने के लिए अभी जंगल जा रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन है कितना पापी, ऐसे लोग सोच रहे हैं उनके बारे में। अच्छा वो जब जंगल में पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी बड़ी आवाज़ सुनते हैं सेना की, तो पेड़ पर चढ़ते हैं और देखते हैं दूर से कौन आ रहा है, देखते हैं कि अयोध्या का राजदंड दिखाई पड़ता है, उनको भरत का रथ दिखाई पड़ता है, सेना दिखाई पड़ती है। तो लक्ष्मण जो भरत को इतना प्रिय था, उसको क्या गलतफहमी होती है कि भरत राम जी पर आक्रमण करने आ रहा है ताकि 14 साल के बाद में जब वनवास भोगकर ये लौट के आएंगे तो जनता का सपोर्ट लेकर ये फिर राजा बनने का मांग करेंगे। तो राजा केवल मैं 14 साल के लिए बनूंगा, ऐसे लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भरत के मन में क्या विचार होगा। वो सोचते होंगे कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन 14 साल के बाद जब राम लौट के आएंगे तो फिर राजपद का डिमांड करेंगे, तो इसलिए वो उन पर आक्रमण करके अयोध्या की सेना के साथ जंगल में ही राम को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो सेना लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध से लाल हो जाते हैं, कहते हैं भैया अभी तक भरत ने मेरी धनुष की तनत्कार नहीं सुनी है, वो क्या समझता है अपने आप को, सेना को लेकर जंगल में आ रहा है पूरी सेना के साथ राजदंड को लेकर, लेकिन आज मैं मेरे धनुष का और बाण का प्रभाव उनको दिखाऊंगा, मैं अकेला ही पूरी अयोध्या की सेना को समाप्त कर दूंगा, भरत के साथ उनको मिटा दूंगा। तो रामचंद्र कहते हैं भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ, उसको आने तो दो, उसको कहने तो दो, क्या कहना है सुनेंगे, अगर युद्ध के लिए छेड़ता है तो फिर देखेंगे क्या करना है, तुम क्रोध मत करो। फिर भी लक्ष्मण बहुत क्रोधित है क्योंकि उसके मन में भी यही गलतफहमी है कि भरत के सहयोग के बिना माता कैकेयी इतना बड़ा प्लानिंग नहीं कर सकती, उसका सहभाग तो उसके अंदर है ही। आप सोच सकते हैं भरत की कितनी बुरी अवस्था है, इतना निष्पाप है व्यक्ति, उसको राम पर इतना असीम प्रेम है, वो केवल अपने आप को दास मानता है राम का, उसके मन में एक कर्ण मात्र की भी इच्छा नहीं है कि राम को छोड़कर खुद राजा बने, उसकी माता ने सब गड़बड़ करके रखा हुआ है, उसके लिए पूरी अयोध्या की जनता उसके खिलाफ है और अब उसका प्रिय ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मण भी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये सोच रहा है कि मैं उसको मारने आ रहा हूँ और युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। तब वो वहाँ पहुँचते हैं और राम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आप मेरे केवल भाई नहीं, आप मेरे प्रभु हो, मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, मेरे आपके चरणों में एक ही विनती है कि मेरी माता ने जो भी कुछ किया उसको आप भूल जाओ और मेरे लिए आप दोबारा राजा बनो। आप जंगल में आ चुके हैं, ठीक है, आपने वनवास का प्रण लिया था, आप वनवासी हो गए कुछ समय के लिए, बस हो गया, अभी वनवास छोड़ दीजिए और मैं सभी ब्राह्मणों को लेकर सामग्री को लेकर मैं जंगल में आया हूँ इसी उद्देश्य से कि मैं आपको यहीं पर राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, यहीं आपको राज्याभिषेक करेंगे, यहीं राजमुकुट पहनाएंगे और यहीं रथ पे बिठाकर राजा के रूप में ही अयोध्या में लौटा के लेके जाएंगे। कितनी बड़ी भावना है भरत की, हाँ, वो ये नहीं कि उसका इमेज खराब हो गया इसलिए वो इमेज को दोबारा बनाना चाहता है, ऐसा नहीं है, उसको हृदय से इच्छा थी कि मेरे प्रभु मेरे भाई राम राजा बने। ये सब करने के बावजूद भी रामायण में लिखा है कि अयोध्या की जनता के मन में विचार था कि जो उसकी प्रतिमा मलिन हो गई है, जो इसकी इमेज खराब हो गई है, उसको दोबारा बनाने के लिए सब नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है लक्ष्मण, लेकिन मन में उसके कपट है, जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, उसके मन में उसके विरुद्ध विचार है। और प्रभु रामचंद्र तो अपने पिता के वचन को निभाने में इतने कठोर थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहो, 14 साल तो वनवास मुझे निभाना ही है, नहीं तो स्वर्ग के देवता लोग मेरे पिताजी का क्या मान रखेंगे, देखो तुम्हारा पुत्र राम तुम्हारा वचन तोड़कर वापस जा रहा है, तुम्हारे स्वर्गवास पधारने के तुरंत बाद ही वनवास छोड़कर अपने वचन को तोड़कर वापस जा रहा है, ऐसी अपकीर्ति होगी मेरे पिताजी की, तो मैं नहीं जा सकता। तो बड़े दर्द भरे हृदय से भरत ने सारे जो सामग्री थी, राजमुकुट था, सब सामग्री लाई थी उन्होंने राज्याभिषेक करने के लिए, वो सब एक कुएं में डाल दिया। आज भी चित्रकूट के जंगल में एक कुआं है, उसका नाम है भरत कूप, भरत का कूप, यानी भरत में उसने बड़ी ही उद्विग्नता से बड़ी दुख से उसने सब अपना साहित्य जो है डाल दिया और बड़ा दुखी होकर सेना को लौटा कर वो ले गया। लेकिन जाने के पहले उसने एक वादा किया भाई से कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े हुए हो कि आप नहीं लौटोगे तो मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरा प्रण क्या है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही, पहले तो कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा, वन में ही रहूँगा, जाऊँगा ही नहीं वापस। तो प्रभु ने कहा कि तुम अगर नहीं रहोगे तो अयोध्या का राजपाट कौन संभालेगा। पिताजी के जाने के पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गए थे, तुम्हारी माता ने वरदान मांगा था तो तुमको ही राज्य छोड़ के गए थे। तुम जंगल में रहोगे तो राज्य का दरबार कौन देखेगा। एक बात बताने को भूल गया मैं कि जब दशरथ जी का देहांत हो गया, राम 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 पुकारते हुए अन्न जल त्याग कर दिया उन्होंने और उनका एक दिन देहांत हो गया। उसके बाद वो जंगल गए थे राम जी को लाने के लिए, लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो प्रभु रामचंद्र ज्येष्ठ भ्राता नंबर दो के भ्राता लक्ष्मण दोनों जंगल में थे। तो कायदे के अनुसार धर्म के नीति के अनुसार भरत जी को अधिकार है अग्नि देने का, तो भरत स्वयं आगे गए और अग्नि देने के लिए आगे गए तो वशिष्ठ मुनि ने उनको रोका, उनको कहा कि तुम तुम्हारे पिताजी के देह को अग्नि नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते, मैं तो उनका पुत्र हूँ, दो बड़े भाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तीसरा नंबर मेरा है तो मेरा ही अधिकार है। तो दशरथ जी भरत के ऊपर इतने क्रोधित थे, जैसे मैंने कहा आपको कि दशरथ जी के मन में भी यही विचार था कि भरत का इसमें हाथ है, तो उन्होंने मरने के पहले दुख में व्याकुल होकर कहा था कि अगर मैं मरूंगा तो भरत को मेरे चिता को अग्नि देने मत देना। तो वशिष्ठ जी उनको याद करते हैं कि तुम्हारा अधिकार तो है धर्म के अनुसार, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जिसका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है मृत्यु के पहले ऐसा ऐलान किया था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे शव को अग्नि देने का अधिकार भरत को मत देना, तो क्या भरत पर बीत गई होगी सोचो, तो बेचारा निष्पाप आदमी था। और वो पिताजी को जाकर समझाने की भी स्थिति में नहीं था, पिताजी ऑलरेडी गुजर चुके थे, पिताजी को क्या समझाएगा, पिताजी है ही नहीं समझाने के लिए कि पिताजी मैं निष्पाप हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरी माता कह के ही नहीं किया है, अब मेरी बात को समझो, मेरे पक्ष को समझो, मेरे विचार को समझो। लेकिन वो समझाने के लिए पिताजी भी उपलब्ध नहीं है और वो ऐसे बोल के भी गए हैं कि इनके हाथ से मेरा दहन नहीं करना है, तो बड़े दुखी होकर वो पीछे हटते हैं। फिर चौथे भाई शत्रुघ्न उनको अग्नि देते हैं और फिर वो उद्विग्न होकर जंगल जाते हैं। और फिर जंगल में प्रभु रामचंद्र नहीं मानते कि मैं नहीं आऊँगा, तो फिर वो कहते हैं कि मेरी भी जिद है कि मैं भी वनवास रहूँगा। तो रामचंद्र कहते हैं नहीं, मेरा आपके लिए आदेश है कि आप लौट के जाओ, अयोध्या नगरी का संभाल करो। बोला ठीक है, अगर आप वनवासी हो तो मैं भी वनवासी बनकर रहूँगा, अगर आप पेड़ की खाल पहन रहे हो, वलकल पहन रहे हो, मैं भी वही पहनूंगा, मैं भी नंगे पैर घूमूंगा, मैं भी अयोध्या नगरी के बाहर शहर के बाहर नंदी ग्राम में झोपड़ी बनाकर उसमें रहूंगा, मैं भी कंदमूल खाऊंगा और आप मुझे आपकी पादुका खड़े होकर दीजिए और उन पादुकाओं को राजा सिंहासन पर बिठाकर उनसे लोज पूजा करके उनसे आदेश लेकर राज्य को चलाऊंगा। और 14 साल के बाद अगर एक क्षण भी तुम लेट लौट के आते हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऐसे उपरण करते हैं। क्या क्या कहते हैं, मैं पेड़ की खाल पहनूंगा, जंगल के अंदर राज्य के बाहर पर्णकुटी में रहूंगा, आपकी पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाकर राज्य करूंगा, नंगे पैर घूमूंगा और कंदमूल खाऊंगा, और एक क्षण भी आप लेट लौट के आएंगे 14 साल के बाद तो आप मुझे जीवित नहीं पाओगे। इतना सब प्रण लेने के पश्चात भी जनता ये सोचती है अयोध्या की कि ये फिर भी नौटंकी कर रहा है, इसके मन में तो कुछ और ही है, लेकिन जनता के सामने उनको उल्लू बनाने के लिए ये सब बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है, इतनी गलतफहमी। उसके बाद में क्या होता है कि वो नंदीग्राम में अयोध्या के बाहर आकर निवास करते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, एक सिंहासन पर पादुका रखते हैं, प्रभु राम की रोज पूजा करते हैं, उसकी कंदमूल खाते हैं और सवेरे व्रत रखते हुए भरी भोर में उठकर स्नान करने के लिए सरयू नदी के किनारे जाते हैं हर रोज। तो अयोध्या के चिड़े हुए क्रोधित लोग जो हैं वो उनको वहाँ पर आकर पत्थर मारते थे, बोले तुम्हारी वजह से प्रभु राम को वनवास होना पड़ रहा है, तुम ही कारण है उसके, ऐसे बोलकर उसको आम जनता एक राजकुमार को पत्थर मार रही है। तो भरत उनको पत्थर लेके वापस दे रहा है, बोला और मारो, मेरी यही योग्यता है, प्रभु राम का दास हूँ। लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं आ रहा कि यह हृदय से बोल रहा है कि नाटक कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये तो केवल नौटंकी कर रहा है, अपनी बीती हुई जो इमेज है उसको बनाने के लिए सब पूरा ढोंग रजा के बैठा है। इस तरह से 14 साल भरत जी रहे, लोगों की पत्थर मार झेलते हुए, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए, वलकल पहनते हुए, कंदमूल खाते हुए 14 साल बिताए उन्होंने। यहाँ तक कि जब सीता जी का अपहरण हुआ और आकाश से हनुमान जी बड़े बड़े चट्टानों को लेकर जा रहे थे। तो एक दिन क्या किया, भरत जी नंदीग्राम में थे, वो देखते हैं कि आकाश में कोई बानर जो है कोई पहाड़ को उठा के ले जा रहा है, तो उनको बाण मारने के लिए तैयार हो जाता है, कोई बंदर जो है आक्रमण कर रहा है। तब हनुमान जी नीचे आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, प्रभु रामचंद्र को सीता जी का अपहरण किया गया है। तो वो कहता है कि मैं अभी आऊँगा सेना लेकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जब वनवास में है, वनवास में वो अयोध्या के किसी भी फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते हैं। अयोध्या की सेना, अयोध्या का ऐश्वर्य, अयोध्या का धन, अयोध्या का अन्न वो कुछ ले सकते नहीं है, वो तो वानरों की सेना के साथ ही लड़ेंगे। उनके साथ अयोध्या के साथ में जो भी कुछ है वो सब कुछ त्याग कर वो युद्ध करेंगे। तो बड़े दुखी होते हैं भरत जी, अरे मैं भाई होकर, इतनी बड़ी सेना होकर, इतना बड़ा साहित्य होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई के लिए, इतना दुखी है। तो ये दो भाइयों के बीच में जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई है परिस्थिति के अनुसार, उसमें कैसा है, अगर समझो राम जी अगर संस्कृति वाले नहीं होते वह ठीक नहीं, ठीक है भरत तुम आ गए हो, चलो कोई बात, मैं लौट के आऊँगा, राजा बनूँगा, तुम तो कह ही रहे हो, सब लोग की जनता भी कह रही है। लेकिन रामचंद्र कहते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी का वचन निभाना मेरा कर्तव्य है। भरत जी कहते कि आप अपने पिताजी के वचन निभाने के में इतने अटके हुए हो, तो मैं भी मेरा नियम आपको बताता हूँ। दोनों निष्प्रूव हैं, दोनों निरपेक्ष हैं, कोई स्वार्थी नहीं इसके, ना राम स्वार्थी है, ना भरत स्वार्थी है, ना लक्ष्मण स्वार्थी है। सब लोग एक दूसरे के लिए त्याग करने पर तुले हुए। भरत को अगर वो अयोध्या के अंदर भी रहता, राजकुमार के वस्त्र पहनकर भी रहता और पंच पकवान भी खाता, तो वो उसको बोलता नहीं था, तो राजकुमारी है वो। लेकिन वो सारा आनंद त्याग करके जंगल में रह रहा है, प्रभु रामचंद्र जंगल में तो रह ही रहे, और इसके विरुद्ध खिलाफ जो कल्चर है वो लंका का है। हाँ, रावण क्या सोच रहा है कि दुनिया में जो वस्तु, हर चीज़ वस्तु, जो भोग्य वस्तु है वो मेरी है, जो भी अच्छी वस्तु दिखाई पड़ती है वो मेरी होनी चाहिए। इसलिए रावण ने जगह जगह जाकर स्त्रियों पर बलात्कार किया, रंभा पर बलात्कार किया, ऋषियों की पत्नियों पर बलात्कार किया, वेदवती का विनय भंग किया, सबसे शाप प्राप्त किया उसने। और विभीषण एक ही ऐसा भाई था उनके कुल में, उसके पिताजी ने कहा था, उसके पत्नी को कहा था जब जन्म देने के बाद कि ये जो तो पुत्र है रावण कुंभकर्ण, ये पूरे हमारे कुल का नाश करेंगे और थोड़ा बहुत जो कुल बचेगा उसकी रक्षा विभीषण करेगा। तो विभीषण राक्षस कुल में रहते हुए भी वैष्णव रूप के रूप में रहता था, वो उसके रूम में सब जगह राम 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 लिखा था। आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि एक बार रावण उसके कुटी में आए, कुटी मतलब उसके महल में जहाँ पर भी आए, सब जगह लिखा था राम 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 राम। बड़ा गुस्सा करते रावण, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी लंका में रहते हुए अपने घर में राम का नाम लिखते हो। तो विभीषण कहते हैं राम नहीं है ये, रावण और मंदोदरी दोनों मिलकर राम ऐसा लिखा है, राम राम शॉर्ट फॉर्म है रा और म, मेरे प्रिय भाई रावण और मेरी प्रिय भाभी मंदोदरी, इनका नाम मैंने एक साथ में लिखा है राम राम राम। तो रावण बड़े खुश हो जाते, मतलब क्या, मैं और मैं और मैं बस और कुछ नहीं, सिंपल, ये रावण का तत्व है। और जब फाइनली वो लंका में सीता जी को चुरा कर लेके आते हैं, और इतना गर्व है रावण को, कह रहे क्या आएगा इधर समुद्र को पार करके, कोई आ नहीं सकता है, कोई अभी तक पहुंचा नहीं है, केवल राक्षस जो हवा में उड़ सकता है वही यहाँ पर पहुंच सकता है और यहाँ से वहां जा सकता है। बाद में सुनता है कि अरे ये तो बंदर लोग तो सेतु बनाकर पहुंच गए। बोला अच्छा, तो अपने महल के ऊपर देखने गए तो हाँ सब लोग पहुंच गए, लंका के किनारे में आ गए सब लोग। अरे इतनी शक्ति इनके अंदर, 800 मील का समुद्र मार्ग पार करके पत्थर का ब्रिज बना के इतने करोड़ों मंकी सब पहुंच गए यहाँ पर, फिर भी उसका होश नहीं आ रहा है। बोले कोई बात नहीं, तो अल्टीमेटली तो मंकीज है ना, ये तो हमारे ब्रेकफास्ट है, उनको हम लोग नाश्ते में खाते हैं, वो दो मानव, वो तो पुरुष है मनुष्य है, उनको भी नाश्ते में खाते हैं, इसलिए हमने वरदान भी नहीं मांगा ब्रह्मा जी से कि हमको इनसे अभयदान दे दो, हमने देवताओं से शस्त्र अस्त्र से अभयदान मांगा है, लेकिन मनुष्य जानवर से कोई वरदान नहीं मांगा है, और डरने की कोई जरूरत भी नहीं है, हम सब लोग राक्षस मिलकर सब खा लेंगे सब लोगों को, ऐसा गर्व है उनके अंदर। फिर बाद में हनुमान जी आते हैं, हाँ उसके पहले आते हैं हनुमान जी सेतु बनाने के पहले, पूरी लंका को जला देते हैं ना प्रसाद हनुमान जी। फिर दरबार में आके चेतावनी देते हैं, रावण अभी भी समय है, मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ, उनका एक सेवक हूँ और उनके आदेश से यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे सामने मैंने इतना हाहाकार मचा दिया लंका में। मैं तो अकेला आया हूँ, मेरे प्रभु अब तक आए नहीं है, मेरी सेना अब तक यहाँ पर आई नहीं है, अभी भी होश में आ जाओ और सीता जी को लौटा दो। फिर भी रावण के होश नहीं खुल रहे हैं, तो बंदर है उसकी पूछ के आग लगा दो तो फिर लंका जला देते हैं पूरी कंप्लीटली। फिर भी रावण के अहंकार को कोई कमी नहीं हो रही है। फिर राज दरबार होता है पूरा, क्या किया जाए अभी। हाँ, एक बंदर आया पूरा जंगल का ध्वंस कर दिया पहले उसने, फिर दरबार में आया इतना सबके सामने खड़ा रह गया, सबको चेतावनी दिया, रावण को कितने बुरे शब्द कहे और फिर हमने सोचा उसका मजाक करते हैं, पूछ को आग लगा दिया तो पूरा रावण की लंका को जला के भस्म कर दिया उसने, अभी क्या किया जाए। तो बड़े बड़े सब लोग खड़े होते, बोलते हम है ना अभी हमने इसका वरदान, इसका वध किया है, उसको वध किया है, उससे शस्त्र प्राप्त किया है, ये तपस्या किया है, हमारे पास ये अस्त्र है, हमारे पास ये शस्त्र है, आप डरो मत, आप वीर हो, आपने जिस स्त्री को चुरा कर लाए हो वो आपकी स्त्री है, हम उस मानव पुत्रों को नष्ट कर देंगे, ऐसा चढ़ाते हैं। और उसको लेकिन एक आदमी खड़ा रहता है विभीषण, वो कहता है नहीं भैया ये धर्म के खिलाफ है, ये कायरों का लक्षण है, तुम वीर हो लेकिन फिर भी तुमने कायरों की भांति रूप बदल कर राम के पीछे से उसको चुरा कर लेके आए हो, तुम युद्ध में जीत कर लेके नहीं आए हो उसको, अभी भी समय है, उसको लौटा दो। तो इंद्र जी खड़ा होता है, कहता है ये काका जो है ना ये हमेशा अनहोनी बातें करता है, अपशकुनी बातें करता है, हाँ दुर्बलता की बातें करता है, डरपोक की बातें करता है, सब लोग हम लोग पिताजी का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अकेला चाचा जो है वो पिताजी का हौसला जो है वो तोड़ रहा है, बड़ा निंदा करते हैं काका की अपनी। फिर भी काका वैष्णव है, वो कहते हैं कि भैया भले ही सारे राक्षस संत जनता आपके साथ में आपके लिए बात कर रहे होंगे लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मिलकर राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं क्योंकि आपने अधर्म का सहारा लिया है, किसी अबला स्त्री को चुरा कर जबरदस्ती लेके आए हैं, कोई वीरता भी दिखाई नहीं, कोई युद्ध भी नहीं किया है। तो रावण को बड़ा गुस्सा आता है, तुम मेरे एक नतदृष्ट भाई हो, दृष्ट का मतलब होता है अपशकुनी भाई हो, तुम हमेशा मेरे खिलाफ बात करते हो, कभी भी मैंने जो कुछ किया है उसका सपोर्ट नहीं करते हो, तो आखिरी बार अपने भाई को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए और अधर्म से बचाने के लिए बड़ी लंबी सीढ़ियां चढ़कर वो विभीषण रावण के सिंहासन के पास पहुंचता है उनके पैर छूने के लिए कि मैं आपके पैर छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप अभी भी मेरी बात मानो और इस अधर्म के कृत्य से बचो। तो जैसे ही वो झुकता है तो रावण उसको लात मार देता है छाती पर, और छाती पर लात मारते ही वो लंबी सीढ़ियों से गोल 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 गिरते हुए नीचे गिर जाता है। ऊपर से रावण अपशब्द भी उच्चारता है उसके लिए, तो चले जाओ यहाँ से, तुम भिखारी हो, हमारे घर में रहने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं, चले जाओ हमारे यहाँ से। और फिर विभीषण दुखी होकर, अभी कोई इलाज नहीं बचा, अभी क्या करेंगे, इतना समझाया तो मुझे ही लात मार के भगा दिया, तो चल के राम को मिलने आते हैं। तो ये कौन सा कल्चर है, विकृति, हाँ परवर्जन, एक जगह पर दो भाइयों के बीच में परिस्थितियों ने गलत फहमियाँ खड़ी करके रखी है। दोनों भाई तो बड़े संत जैसे हैं, प्रभु हैं स्वयं, ये दोनों भाई एक दूसरे के लिए त्याग करने पर तुले हुए हैं और यहाँ पर भी गलतफहमी हो रही रावण में, रावण के लंका में, तो एक भाई दूसरे भाई को लात मारकर भगा रहा है। ये संस्कृति का अंतर है। और बीच में और भी एक जगह है जिसका नाम है किष्किंधा, उसकी कथा आपको अगली बार बताएंगे। उसकी कथा कैसी है, प्रकृति, प्रकृति यानी एक जगह है कृतज्ञता, यानी क्या कहते हैं उसको हिंदी में, धन्यवाद देने की भावना। राम भरत को धन्यवाद दे रहा है कि चलो भाई मैं जंगल में आया, तुम तो कम से कम हो, तुम्हारा धन्यवाद है, तुम अयोध्या की रक्षा करो। भरत जी राम को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप चलो, आप मेरे बड़े भाई, आप योग्य हैं, आप चलकर राज चलाओ। सब एक दूसरे के लिए सहायता कर रहे हैं, सब एक दूसरे को सराहना कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को बड़ा मान रहे हैं अपने से और अपने को उनका दास मान रहे हैं। इसको कहते हैं संस्कृति। संस्कृति कैसी होती है, जिस जगह पर अपने आप को हम तुच्छ मानते हैं और बाकी सब लोगों को बड़ा मानते हैं, और अपने आप को दूसरों के सेवक मानते हैं, सबको सेवा करते रहते हैं। तृणादपि सुनीचे न तरो रिपस्त सरो रवि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। प्रभु का नाम लेते हुए, सबका आदर करते हुए, सबके सामने नम्र होकर सबको सम्मान देते हैं। अमानी ना मान देना, अपने लिए मान नहीं दूसरे लिए मान दे रहे हैं। ये संस्कृति अयोध्या की है, इसलिए अयोध्या हमारे लिए आदर्श संस्कृति है। वो संस्कृति हम भक्ति विधान में भी ला सकते हैं, अपने घर पे भी ला सकते हैं। उसका अर्थ क्या है उस संस्कृति का? दूसरों की सेवा करना। माता पिता, भाई बहन, भाभी, देवर, जो भी हमारे घर पे हैं वो सब हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। और जो भाभी है, वो जो देवर है, वो भी सोचता यही है कि जो कितने घर में लोग हैं उन सबका मैं दास हूँ और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और लंका का कल्चर क्या है? ये सबका मैं स्वामी हूँ, सब चीज़ की प्राप्ति मेरे लिए है, जो भी अच्छी वस्तु है वो मेरे भोग के लिए है। हर एक आदमी यही सोच रहा है कि आई एम द बॉस, मैं सबका स्वामी हूँ। और यहाँ पर क्या लोग सोच रहे हैं? मैं सबका दास हूँ। प्रभु रामचंद्र भी सोचते ही है कि अयोध्या की प्रजाजनों, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके राजा के आदेश से जा रहा हूँ, आप कष्ट मत करो, आप अपने घर जाओ, मैं जल्दी ही लौट के आऊँगा आपकी सेवा में। ये नहीं जल्दी लौट के आके आपका राजा बनूंगा, ऐसा नहीं कह रहे हो, जल्दी लौट के आऊँगा आपकी सेवा में, आऊँगा आपकी सेवा करूँगा। राजा होते हुए, प्रभु होते हुए भी अयोध्या की संस्कृति क्या है कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। और लंका में इसका विरुद्ध भाव हो रहा है। और एक जगह है किष्किंधा, जहाँ पर भी दो भाई है, एक वाली और एक सुग्रीव, उसके अंदर क्या रिश्ता है हम आपको अगली बार बताएंगे। आज की कथा का तात्पर्य इतना ही है, उनको रामायण से सीखना क्या है, केवल मनोरंजन नहीं करना है। एक थे राम थे, एक सीता थी, उनका विवाह हुआ, राम ने पराक्रम किया, सीता जी का हरण किया गया लंका के रावण द्वारा, और फिर भगवान ने वानरों के साथ में रावण का वध कर दिया, फिर लौट के आए अयोध्या का राज्य किया, बस रामायण खत्म हो गया। ये आदर्श व्यवहार का एक शास्त्र है। इसमें तुम्हारे हमारे लिए, हम लोग कहेंगे अरे हम लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कुछ लोग कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम तो गरीब हैं, कुछ लोग कहेंगे हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत धन दौलत है। ये सभी प्रकार के लोगों के लिए, आदमियों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, धनवानों के लिए, गरीबों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, बलवान लोगों के लिए, हाँ अच्छे गुण वाले लोगों के लिए, दुर्गुण लोगों, सबके लिए आदर्श कैसा व्यवहार करना है, ये हम लोग रामायण से सीखते हैं। आपको और हमको, हाँ चाहे हम डॉक्टर हैं या आप कोई और पेशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, ये सब के लिए दिए हुए स्थिति में कैसे आदर्श व्यवहार करना है, इसका मार्गदर्शन हमको रामायण में मिलता है। हमको यही सीखना है, इसका गर्व रखना नहीं कि हम डॉक्टर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत मरीज देखते हैं, बहुत धन कमाते हैं, या हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास साधन भी नहीं है। ये दोनों विचारधारा गलत है। सही विचारधारा क्या है? हम जो भी कुछ हैं भगवान के सेवक हैं। जीवे पर जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, किसी भी समय हम लोग भगवान के दास होने से बचते नहीं हैं, अलग नहीं होते। ऐसा कोई समय नहीं है जिससे हम भगवान के दास के बिना और कुछ होते। हर एक समय, हर एक क्षण, हर एक जीवन में, जीवन के अंत तक हम भगवान के दास बने रहते हैं। तो भगवान के दास बनकर कैसा व्यवहार करना है, कैसी उनकी सेवा करना है, कैसे आदर्श रूप से व्यवहार करना है, ये हम रामायण से सीखते हैं। और कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ये हम लंका से सीखते हैं। लंका के व्यवहार को देखकर सीखते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज सब लोग क्या सोचते हैं? जो लोग रेप कर रहे हैं, जो लोग डकैती कर रहे हैं, जो कुछ एसिड फेंक रहे हैं, कुछ क्या क्या कर रहे हैं आजकल लोग, क्या सोचते हैं कि जो भी दुनिया में है वो सब मेरे लिए है, जो भी दुनिया में अच्छा दिखता है वो मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है मुझे वो तो मैं नष्ट कर दूंगा उसको। अगर कोई लड़की मेरे साथ विवाह करने को तैयार नहीं है तो मैं उसको एसिड फोक कर नष्ट कर दूंगा उसको, मतलब मुझे नहीं तो और किसी को नहीं। यही भावना लंका की भावना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अयोध्या जैसे संस्कृति में लंका इस संस्कृति को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज जो हमारी स्थिति जो है क्या हो रही है, रावण की लंका की संस्कृति यहाँ पर आ रही है, वहाँ की जो विकृति है वो हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसलिए पेपर खोलते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, रावण की लंका का खबर पढ़ते हैं, सब रेप हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, डकैती हो रही है, लोग लूट रहे हैं, लोगों का पैसा खा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग कितना घपला कर रहे हैं, ये सब क्या है? रावण ने क्या किया था? कुबेर के पास गया, वहाँ आक्रमण किया, उसका विमान लेके आया, यहाँ पर गया उसकी तलवार लेके आया, वहाँ पर गया उसका ये सिंहासन लेके आया, उधर गया उसका ये लेके आया, जिस जिस लोक में गया वहाँ जो जो अच्छी चीज़ मिली उस सब उठा के ज़बरदस्ती लेके आया अपने लंका के अंदर। ये लंका की संस्कृति है, जो भी अच्छा है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नहीं मेरे पास होना चाहिए, मैं बलपूर्वक मेरे को ले लूँगा उसको मेरे लिए। ये लंका की संस्कृति को हमको नष्ट करना है, इस विकृति को छोड़कर जो आदर्श संस्कृति हम देख रहे हैं अयोध्या में उसको हमको अपनाना है, और वो अपनाना है केवल कथा सुनने से नहीं अपना सकते हैं, उसके लिए भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। जब भगवान के नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे वो जो श्रेष्ठ संस्कृति है वो हमारे जीवन में उतरते हुए नजर आएगी, और धीरे धीरे रावण वाली संस्कृति विकृति जो है वो दूर जाते हुए नजर आएगी। इसलिए हमको समाज को, देश को, राज्य को और जाति को बदलना नहीं है, वो किसको बदलना है, अपने आप को बदलना है। जब हम हर एक व्यक्ति अपने आप को बदलेंगे अयोध्या की संस्कृति के अनुसार, तो फिर जाति बदलेगी, फिर राज्य बदलेगा, फिर देश बदल जाएगा। समाज में परिवर्तन कब आएगा, जब हम पहले सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, यही हमको सीखना है। और वो सुधारने की, परिवर्तन करने की अगर शक्ति चाहिए तो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये नाम का उच्चारण करते हैं तो हृदय की शुद्धि होती है। और एक रहस्य की बात क्या है, सबके हृदय के अंदर अयोध्या है, सबके हृदय के अंदर मूल रूप में यहाँ अयोध्या बसी हुई है, क्योंकि प्रभु राम प्रभु कृष्ण का निवास है यहाँ पर। तो नाम जप करने से क्या होता है, जो मैल है, कचरा जमा हो गया है ना वो रावण की विकृति का, उसका नाश होता है। और जैसे ही ये नाश विकृति का होता है तो अंदर का जो कल्चर है अयोध्या का वो अपने आप ऊपर आता है। उनको बाहर से कुछ डालना नहीं है अंदर, केवल अंदर जो है उसको जागरूक करना है, उसको जगाना है। आपके अंदर वो सब अयोध्या की संस्कृति बसी हुई है आत्मा के और परमात्मा के सान्निध्य में, उसको भगवान का नाम का जप करके जागरूक करना है, तब जाकर हम आनंद का अनुभव करेंगे, समाधान का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, संतुष्टि का अनुभव करेंगे, और हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।